स्थापित, जो उनके जीवन काल में उन्होंने स्वयं स्थापित की थी अपनी उत्तराधिकारिणी सभा। जैसा आप जानते हैं वो तो सन्यासी थे, तो उनकी कोई संतान होने का सवाल ही नहीं उठता। तो उन्होंने ये सोचा, मेरा जब जीवन अंत हो जाएगा तो मेरी जो भी संपत्ति है, उनकी संपत्ति तो पुस्तकें थी, और जो मैं काम कर रहा हूं उसका उपयोग, उसकी जिम्मेवारी किसको दूं। तो उन्होंने 23 गणमान्य व्यक्तियों को इकट्ठा करके एक रजिस्टर बॉडी बनाई थी, जिसका नाम था श्रीमती परोपकारिणी सभा। तो आज उस सभा के संचालन ये है। कल हमारे देव जी ने प्रश्न किया था कि आय समाज में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है लोकतंत्र का, उससे हमें क्या क्षति हो रही है। तो महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित आय समाज भी एक संगठन है और परोपकारिणी सभा भी एक संगठन है, लेकिन परोपकारिणी सभा में वो लोकतंत्रात्मक ढांचा नहीं है। उन्होंने उस समय के जो एमिनेंट लोग थे, और इसका प्रधान बनाया था महाराणा सज्जन सिंह को, जो उदयपुर के राजा थे उस समय और महर्षि दयानंद के बड़े विश्वास पात्र थे। तो यह परंपरा चली आ रही है, जब भी उन 23 व्यक्तियों में एक का निधन हो जाता है तो 22 व्यक्ति मिलकर एक 23वां व्यक्ति चुन लेते हैं। तो इस ढंग से ये सभा चल रही है। अजमेर में बहुत अच्छा काम है, मैं अभी विस्तार से नहीं जाना चाहता। इसका लगभग 50 लाख रुपया सालाना बजट है, विच इज नॉट बिग अमाउंट फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इनके पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। महर्षि दयानंद ने जो कुछ भी लिखा, एक एक कागज को संभाल कर रखना, और जो भी उनकी जो चीजें थी, उनका दुशाला, उनकी खड़ाओं, उनका उस्तरा, ये सब चीजें, मैं तो अजमेर बहुत गया, मैंने सब देखा अपनी आंखों से। तो इनकी जिम्मेवारी है कि उसको संभाल कर रखना एकदम, और यह संस्था आगे बढ़ती भी जाए। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, श्री आचार्य डॉक्टर धर्मवीर जी, जो बहुत ही लब्ध प्राप्त वेदों के अच्छे विद्वान है, हमारे लिए उच्च कोटि के विद्वान है, हम इनकी व्याख्यान माला का बहुत स्वाद ले रहे हैं। आज का विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स, वैदिक वाङ्मय की महत्व, विशेषकर आज के युग में। डॉक्टर धर्मवीर जी,
ओम वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तमादित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आदरणीय आचार्य डॉक्टर हरिश्चंद्र जी, इस संस्था के प्राण हमारे महाजन जी, उनके साथी, आदर सम्मान की योग्य बहनों, वेद का महत्व या वैदिक साहित्य का महत्व किसी आर्य समाज को बनाना बताना कठिन है कि सरल है, दोनों में से कोई शब्द चुनना ही बड़ा मुश्किल है। सरल तो इसलिए है कि वो आर्य समाज है तो वेद जानता है, वेद का महत्व जानता है, और कठिन इसलिए है कि वो जो जानता है कुछ उससे आगे की बात करनी है, तभी तो कुछ बात महत्व की बनेगी, नहीं तो महत्व क्या रहा, फिर तो सामान्य बात हो जाएगी। इसकी थोड़े से इतिहास में मैं जाना चाहता हूं। इतिहास में ये जाना चाहता हूं, कुछ 2-4 साल पहले औरंगाबाद में एक बहन ने एक यज्ञ किया और उसमें मुझे बुलाया, मेरे साथ एक युवा व्यक्ति और थे, और उसका प्रयोजन ये रखा कि लोगों को हवन करना सिखाना है। उसमें अच्छी बात क्या थी कि 250 हवन कुंड रखे गए थे, तो किसी पर 2-4-6 बैठे थे लोग, लेकिन एक भी व्यक्ति कभी भी आर्य समाज में नहीं गया था, उसने कभी हवन नहीं किया था, वो आर्य समाज से परिचित भी नहीं था, यह सबसे अच्छी बात थी। 3 दिन के कार्यक्रम में हमने उनको जो भी सिखा सकते थे बता सकते थे बताया। एक व्यक्ति ने बड़ा रोचक प्रश्न किया मेरे से, वो बोला साहब आप हमें क्यों तंग करने पर लगे हुए हो, हमारा काम तो ठीक ठाक चल रहा है, तुम्हारे हवन के बिना मंत्र के बिना इस वेद के बिना हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं है, फिर पता नहीं क्यों आप हमें हवन सिखाना चाहते हो, वेद बताना चाहते हो, मंत्र सिखाना चाहते हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। बड़ा विचित्र प्रश्न था। तो उस समय जो बात मेरे मन में आई मैं आपसे बांटूंगा, तो तत्काल मुझे उत्तर देना था। मैंने कहा मित्र इस दुनिया के इतिहास में एक अद्भुत काम हुआ है, आश्चर्यजनक अकल्पनीय, कोई सोच भी नहीं सकता, और वो काम कितना विचित्र है कि आप कभी सोचो कभी आपके कुछ पैसे कोई सामान चोरी हो गया हो, आप थोड़ा बहुत हाथ पैर मारोगे भूल जाओगे, 2-4 पीढ़ी में तो क्या अपने कोई याद नहीं रहता, पीढ़ियों की बात तो बहुत दूर की रहती है, कोई गांव में ही डकैती पड़ गई 10-20 साल चर्चा होती है बात समाप्त हो जाती है, कोई आशा करता है कि हमको कोई कुछ जो गया है वो मिल जाएगा, भूल चूक से कभी हो जाए किसी के साथ तो अलग चीज है, नहीं तो गया तो गया, और खास तौर से जो इरादे से लेकर गया है वो देगा इसमें सोचना ही गलत है। तो मैंने उनसे कहा मित्रों देखो कितनी विचित्र बात है कि कोई चीज हम आपको देना चाहते हैं और आप कहते हो हमें जरूरत क्या है, क्यों? मैंने कहा एक अद्भुत बात हुई है इतिहास की, ऐसी अपूर्व घटना जिसको कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसी कल्पना क्या? मैंने कहा देखो तुम्हारे घर में एक डकैती पड़ी थी और उस डकैती में तुम्हारा सब कुछ चला गया था, लूट लिया गया था, डाका डाल दिया गया था, और तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारे घर में डाका पड़ा था, लेकिन 5000 साल बाद एक आदमी आया और उन घर वालों को इकट्ठा करके कहता है भले लोगों हमारे पूर्वजों ने गलती की थी, उनसे एक भूल हुई थी, एक अपराध हुआ था और हम तुम्हारी संपत्ति ले गए थे और हम उसे लौटाने आए हैं और आप कहते हो हमारा लेना देना क्या है। मैंने कहा एक दयानंद नाम का आदमी 5000 साल बाद आया था और उसने इस समाज को यह बताया था कि तुम्हारी संपत्ति पर कोई डाका पड़ा था, डाका डालने वाले कोई दूसरे नहीं थे, हमारे ही पूर्वज थे और उन्होंने जो गलती की है उसको मैं सुधारना चाहता हूं, सुधारने के लिए आया हूं और आया ही नहीं हूं, वो तुम्हारी संपत्ति मैं तुझे लौटा रहा हूं। अब इससे बड़ी बात हो क्या सकती है? आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? क्यों? अब एक बात समझ लो कि वेद हमने इसलिए नहीं छोड़े थे कि हमको कुछ वेद से ज्यादा मिला था, हमने वेद इसलिए भी नहीं छोड़े थे कि हमको वेद का उपयोग समाप्त हो गया था, हमने वेद इसलिए भी नहीं छोड़े थे कि वेद हमारी समझ में नहीं आता था, इनमें से कोई कारण नहीं था। वेद हमारी समझ में आता था, वेद हमारे जीवन का अंग था, वेद हमको उपयोगी था, लेकिन फिर भी हमको छोड़ना पड़ गया क्योंकि एक डकैती थी इतिहास में। और डकैती कैसे पड़ी थी पता है आपको? ऋषि दयानंद को समझो। ऋषि दयानंद ने कहा है कि इस देश का पतन महाभारत के 1000 साल पहले से शुरू हुआ था और महाभारत उसकी पराकाष्ठा थी। और महाभारत का युद्ध होने का मतलब यह था कि आदमी स्वामी जी वहां कोई बाहरी आक्रमण नहीं था, वो केवल धर्म अधर्म वो भी अपनों के बीच में पैदा हुआ था। और वो कब पैदा होता है? जब आदमी बहुत ऐश्वर्यशाली हो जाता है, बहुत संपन्न हो जाता है, तो उसकी कभी धर्म में रुचि नहीं होती। आज भी जिसके पास सत्ता हो, साधन हो, पैसा हो, वो आदमी कानून को धर्म को कुछ समझता नहीं है। विलासिता के शिखर पर था देश और उसका परिणाम अधर्म का पैदा होना। तो उस संघर्ष में इस समाज में जो गया वो क्या गया? वो गया जो कुछ अच्छा था वो गया। अच्छे आचार्य थे, अच्छे व्यवस्थापक थे, अच्छे योद्धा थे, अच्छे आचार्य थे, सब चला गया। ऐसे समय में एक परिस्थिति पैदा होती है, जब शून्य होता है तो जब योग्य व्यक्तियों का अभाव होता है तो अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में अधिकार, सत्ता, शासन आता है। जो आरक्षण आज हुआ है यही आरक्षण 5000 साल पहले हुआ था। और जितना अपराध पूर्ण वो था उतना ही अपराध पूर्ण ये है जो आज हमारे देश में है। वो आरक्षण कैसे हुआ था और जैसे आइए आरक्षण हो रहा है बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। हुआ क्या था कि उस समय की जिन कमजोर लोगों के हाथ में सत्ता आई, अधिकार आया, उन्होंने ये समझा कि इस अधिकार को हम कैसे बनाकर रखें। कमजोर आदमी की पहचान होती है, कमजोर आदमी अपने बराबर के आदमी को कभी सत्ता में आने नहीं देता, अपने बगल में नहीं आने देता, अपने पास नहीं फटकने देता। इसलिए आप देखोगे कि जो अधिकारी सत्ता के मूर्धन्य होते हैं, शिखर पर होते हैं, उनके आसपास बेवकूफ मूर्ख लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका काम उन्हीं से चलता है, बुद्धिमान लोगों से कभी काम नहीं चलता। परिणाम गठजोड़, एक गठजोड़ किसमें? राज सत्ता में और ब्राह्मण सत्ता में। जो तू कहे उसका समर्थन मैं करूंगा और जो मैं कहूंगा उसका समर्थन तू करना। राजा ने ब्राह्मण को अधिकार दे दिए और ब्राह्मण ने राजा को सारे अधिकार दे दिए कि तुझे मुझे कुछ नहीं कहना है, तू मुझे कुछ मत कहे। उस दिन क्या घटना हुई? घटना यह हुई, जो चक्र चल रहा था ना उस दिन उसमें कील ठोक दी और चक्र को जहां का तहां खड़ा कर दिया। आप कहेंगे प्रमाण, मनु को उठा लो। हमारे यहां समाज का चक्र चल रहा था, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तु विद्याद्वैश्यात् तथैव च। मनु महाराज कहते हैं ब्राह्मण यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वो शूद्र हो सकता है, होना पड़ेगा। शूद्रो ब्राह्मणताम एति, और यदि शूद्र समर्थ है, योग्य है, बुद्धिमान है, ब्राह्मण होना बनेगा, निश्चित बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो शूद्रो ब्राह्मणताम एति, शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है और ब्राह्मणश्चैति शूद्रता, और ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है। क्षत्रिय जातम एवं तो विद्याद वैश्या तथैव, ऐसे ही वैश्य ऐसे ही क्षत्रिय का हाल है। इस बात की पुष्टि आपस्तंभ धर्म सूत्र में होती है। धर्मचर्यया अपरो अपरो वर्ण पूर्वम पूर्वम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तम, अर्थात कोई आदमी धार्मिक आचरण करता है, नियमों का पालन करता है, तो नीचे नीचे का वर्ण ऊपर ऊपर के वर्ण को प्राप्त होता है। और अधर्मचर्यया पूर्वो पूर्वो वर्ण अपरम अपरम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तम, और यदि ऊंचा वर्ण अनुचित आचरण करता है तो धीरे धीरे उसे नीचे की परिस्थिति में जाना पड़ता है। और ये चक्र चल रहा था, इसमें किसी को परेशानी नहीं थी। आज ब्राह्मण है, नहीं योग्य हुआ, नहीं रुचि हुई, नहीं मन हुआ, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। शूद्र वो नहीं है जो बनाया गया है, शूद्र वो नहीं है जिसे पढ़ाया नहीं गया है, शूद्र वो नहीं है जिसे रोका गया है, शूद्र वो है जिससे बना नहीं है, जिससे हुआ नहीं है, जो पढ़ पाया नहीं है और उसको कर्म में सक्षम है, कर्म की आस्था है, कर्म की उपयोगिता है। और इसकी आवश्यकता ब्राह्मण को भी है, इसकी आवश्यकता क्षत्रिय को भी है, इसकी आवश्यकता वैश्य को भी है। और ये इतनी सामान्य चीज है कि इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते। आपके शरीर को हमारे लोगों ने चार भागों में बांटा है, आपका सिर ब्राह्मण है, आपकी भुजा क्षत्रिय है, आपका मध्य भाग वैश्य है, आपका पैर शूद्र है। किसको निकाल दोगे, किसका अनादर कर लोगे, किसके बिना रह जाओगे? तो वैसे ही समाज पुरुष में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। और विशेषता क्या थी कि ये सक्रिय था, थी एक चक्र चल रहा था। जब जो चाहे, आज कोई डॉक्टर बनना चाहे डॉक्टर बनता है, कल उसका बेटा इंजीनियर बनना चाहे इंजीनियर बन जाता है, परसों कोई वकील बनना चाहे वकील बन जाता है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन महाभारत के बाद पहली बार ऐसा हुआ जिस दिन ये माना गया कि आज जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण रहेगा, परिणाम उस दिन जो क्षत्रिय था वही क्षत्रिय रहा, उस दिन जो वैश्य था वही वैश्य रहा, उस दिन जो शूद्र था वही शूद्र था। उस दिन हमारे इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना घटी। और उससे भी आश्चर्य की बात क्या हुई कि हम पढ़ना नहीं चाहते, ये दोष नहीं था हमारा, बल्कि हमें पढ़ने से रोका गया। और आप एक कल्पना करो, आजकल के लोग ये कहते हैं ये मनुस्मृति वाले खराब हैं, ये वैदिक धर्म वाले खराब हैं, ये सवर्ण वाले खराब हैं, ये महिला पर ये है, ये उन पर अत्याचार है, दलितों पर है। मनुष्य जब स्वार्थ आता है तो केवल स्वार्थ करता है, और स्वार्थ पूरा करने के लिए सबसे बड़ा काम है कि जितनी बाधा है उसे हटाओ, और सबसे बड़ा बाधक होता है समझदार। वो कहीं भी खड़ा होता है तो सबसे बड़ी बाधा पैदा करता है। इसलिए कोई भी जो ये चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं, बिना विरोध के रहूं, जो मैं करूं चाहूं वो करूं, तो ऐसे व्यक्ति का एक ही काम होता है कि समझदार आदमी को आसपास नहीं रखता। उस दिन ये काम हुआ। उस दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण या सवर्ण से भिन्न कोई वेद नहीं पढ़ेगा। मतलब ये कहा गया कि वेद मत पढ़ो, ये किसी ने नहीं कहा कि मैं पढ़ना नहीं चाहता। स्त्री शूद्र नाधी आताम इति श्रुति, श्रुति कहती है स्त्री शूद्र वेद न पढ़े। आपको आश्चर्य होगा, मैं कुछ साल पहले केरल गया, संयोग से मेरी पत्नी मेरे साथ थी, तो एक व्यक्ति मेरे साथ और था, उसने कहा कि यहां एक ऐसा विद्यालय है जो ऋग्वेद का पाठ सिखाता है, निम्बोद्रीपाद ब्राह्मण है, और उस निम्बोद्रीपाद ब्राह्मण में के पास देश के लोग वेद सीखने आते हैं, सस्वर वेद पाठ सीखने आते हैं। हमने उस व्यक्ति को दूरभाष किया, फोन किया, हमने कहा भाई तू गांव में रहता है, हम आना चाहते हैं, और यदि हमको देर हो गई तो क्या, होटल तो कोई होगा नहीं, तो क्या तुम अपने घर में हमें ठहराओगे? तो पता है वो क्या कहता है? बोले ब्राह्मण हो गए तो ठहराऊंगा, नहीं तो नहीं ठहराऊंगा। बड़ी संकट की बात है। हमने कहा यदि हम वेद मंत्र सुना दें तो बोला मैं तुम्हें ब्राह्मण मान लूंगा। हम दयानंद ने तो हमको ब्राह्मण बना ही दिया। हम उसके पास गए, जैसे ही हम उसके घर में गए हैं, बैठक में बैठे हैं, और हमारी पत्नी महिलाओं के साथ अंदर कमरे में चली गई, 5 मिनट नहीं हुए होंगे कि उसकी बेटी आ गई और मलयालम में उसने अपने पिता से कुछ कहा। हमने पूछा क्या कह रही है? बोले ये कह रही है कि अभी अभी जो एक महिला आई है ना, ये जनेऊ पहनती और गायत्री मंत्र बोलती है, इसे पाप नहीं लगेगा? कौन किसकी बेटी बोल रही है? निम्बोद्रीपाद ब्राह्मण जो शंकराचार्य का वंशज है, जिसके घर हजारों सालों से वेद पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जो स्वयं वेद पाठी है, जिसके बच्चे सस्वर वेद सीख रहे हैं, उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी मां बावड़ी में सवस्त्र स्नान करके निकलती है, मंदिर की व्यवस्था करती है, वेद की किताब को रखती है पढ़ने की जगह पर और मंदिर से बाहर आ जाती है ताकि वेद का कोई शब्द उसके कान में न पड़े। अब वेद का महत्व किस तरह से देखोगे कि लोगों ने वेद को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया, इसमें महत्व है कि ऋषि दयानंद ने लोगों तक पहुंचा दिया, इसमें महत्व है। महत्व तो दोनों जगह है। वहां तो अधिकार को अपने पास समेटने के लिए दूसरों से वेद छीना गया है और यहां उस अधिकार को देने के लिए वेद दिया गया है। ये इतिहास की जो भूमिका है इसको हम बहुत कम ध्यान में रखते हैं। वहां हमारे ऊपर वेद पढ़ने पर प्रतिबंध लगा और आश्चर्य देखो, आप जब कहते हो स्त्री वेद न पढ़े तो भले आदमी ब्राह्मण ने शूद्र पर ही अत्याचार नहीं किया, आपने घर में ही कर लिया, पूरे मानव समाज का आधा अनपढ़ कोटि में चला गया, बचा उसमें शूद्र, वो भी चला गया, तो 75% तो वैसे ही हो गया। और फिर दूसरी दुर्घटना क्या होती है, उन लोगों ने क्या किया कि वेद नहीं पढ़ना, एक चीज तो क्या पढ़ना, कुछ तो पढ़ना, नहीं तो पढ़े फिर करना क्या, कुछ तो पढ़ना, तो उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की जो वेद से इतर हैं और जिन्हें वेद का महत्व दिया गया है उनमें ये सब पुराण आते हैं। और आपको आश्चर्य होगा जब आप संस्कृत साहित्य कभी पढ़ेंगे तो जब भी किसी चीज का महत्व बताना होता है ये कहता है पंचमो वेदा, ये पांचवां वेद है। जैसे कहते हैं नाट्य शास्त्र पंचमो वेद, आप कहते हैं महाभारत पंचमो वेद, कोई पुराण है पंचमो वेद, मतलब वेद के नाम पर आपको कुछ तो देना है, तो उन्होंने ये दिया। और ये सारा का सारा आया कहां से, उसको तो उन्होंने छिपा दिया। उसका एक उदाहरण देता हूं, नाट्य शास्त्र में एक श्लोक आता है कि भाई जो आप ये गाते हो, नाचते हो, बजाते हो, ये सब क्या है? तो कहता है जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदाद अभिनयान रसान आथर्वणादपि। कहता है जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदा, संवाद कहां से आया? ऋग्वेद से। आप जिसे क्या कहते हैं डायलॉग, संवाद। जग्राह पाठ्य मृग वेदात, गीत कहां से आया? सामभ्यो गीतमेव च। अभिनय एक्शन कहां से आया? यजुर्वेदात अभिनयान। रस कहां से आया? रसान आथर्वणादपि। तो वहां लिखा कि भाई ये क्यों बनाया कि भाई शूद्र और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए भरत मुनि ने इसकी रचना की। तो एक चीज हमारी समझ में पहले ये आनी चाहिए कि वेद हमने छोड़ा नहीं है, वेद हमसे छुड़ाया गया है। आपकी समझ में महत्व अपने आप आ जाएगा। अब उसकी जगह विकल्प में हमको क्या क्या दिया है, ये इसमें दो तरह की गड़बड़ हुई है। एक ये है कि जो ग्रंथ थे उनमें प्रक्षेप जिसे कहते हैं मिलावट, जो वेद का नहीं है किंतु ब्राह्मणों ने जो उनके पास विद्वत्ता थी उन्होंने जो चाहा मिला दिया। आप मनुस्मृति पढ़ोगे आपको बड़ा आश्चर्य होगा। एक तरफ तो ये लिखता है अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहरता च खादकश्चेति घातका, कि मांस खाने वालों में कौन कौन पापी होता है? अनुमंता मारने की अनुमति देने वाला, विशसिता काटने वाला, निहंता टुकड़े करने वाला, क्रय बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला। उसी मनुस्मृति में क्या लिखा है? ब्राह्मण को फलाने श्राद्ध में इसका मांस खिलावे, उसका मांस खिलावे, तीतर का खिलावे, बटेर का खिलावे। अब आप ये कहो कि मनु ने लिखा है तो दो बातें, एक मनु कैसे कह सकता है? या तो ये सच है या वो सच है। एक जगह लिखता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, दूसरी जगह कहता है कि इनको वेद पढ़ने से बाहर कर दो। दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं? फिर दोनों सच नहीं हो सकती तो मनु की कौन सी हो सकती है? गलत और सही दो बात कहीं मिल जाएं तो उसके घर में कौन सी बात सही मानोगे, कौन सी ठीक मानोगे, उसकी कौन सी मानोगे? वो कोई चोर डकैत तो है नहीं जो गलत बात को बताने के लिए लिखेगा। तो उसकी जो बात है वही उसके हिसाब से मानी जाएगी, जो उसके मुख से जबरदस्ती कहलवाई गई है वो उसकी कैसे मानी जाएगी? आप कहते हो ना भाई तुम्हारी बात मेरे मुंह में क्यों डालते हो? एक चीज ये हुई। अब उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि बुद्धिमत्ता जो है वो बहुत पढ़ाई से और किसी बहुत चीज से बंधी हुई नहीं है, उसके संस्कार अलग होते हैं। आपने वेद पढ़ने नहीं दिया, उल्टे सीधे काम वेद पर शुरू कर दिए। कितने गजब के काम शुरू किए, वो कहते हैं वैसे तो हिंसा करनी नहीं चाहिए, फिर क्या करते हैं? वही देखिए हिंसा हिंसा न बहुती, वेद का हवन करते हुए स्वाहा करते हुए बकरा काटो तो उसे हिंसा नहीं कहते, वो पवित्र कर्म है और आज तक भी उसको करते आ रहे हैं। ये प्रक्षेप है, वेद तो नहीं कहता, वेद तो कहता है कि किसी की हिंसा होनी, मां हिंसी पुरुषन जगत, हिंसा मत कर। यजमानस्य पशुन पाई, यजमान के पशुओं की प्राणियों की संतान की रक्षा कर। लेकिन हो गया उल्टा। अब क्या हुआ? तो इस मूर्खता को जिन लोगों ने स्वीकार किया वो हम पौराणिक कहते हैं, उनको सनातनी कहते हैं, उनको हिंदू समाज का विशेष भाग कहते हैं, वो संप्रदाय है। जिन्होंने इनकार किया जैन है, बौद्ध है, चार्वाक है, वाम मार्ग है। क्यों? वो सीधे सीधे कहते हैं पशुश्चेन्निहत स्वर्गम ज्योतिष्टो मे गमिष्यति स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंसति। कहता है भले आदमी बकरे को मार्ग के स्वर्ग भेज रहा है ना, बकरे ने तो कोई अर्जी नहीं दी, प्रार्थना पत्र नहीं दिया कि मुझे स्वर्ग भेजना है, तो ऐसा करना अपने बाप को भेज दे। पशुश्चेन्निहत स्वर्गम ज्योतिष्टोमे गमिष्यति, ज्योतिष्टोम में पशु की हत्या करने से यदि पशु स्वर्ग में जाता है, स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान् न हिंसेते, तो भले आदमी तेरे बाप को स्वर्ग की जरूरत है, उसे भेज। उसने ऐसे प्रश्न किया। उसने एक प्रश्न किया कि तेरा यहां का दिया हुआ पिंडदान वहां मिलता है, तेरा यहां का किया हुआ श्राद्ध उसे मिलता है, तो यार तो दूसरे गांव गए हुए अपने परिवार के आदमी के लिए खाना लगा के यहीं क्यों नहीं रखता? व्यर्थम पाथे या कल्पनम, रस्ते में बांध कर क्यों ले जाता है? खाने के समय होगा, तेरी थाली तेरे घर में यहां लग जाएगी तो वहां खा लेना। ये उसका विरोध पैदा हुआ। तो बौद्ध धर्म विरोध में पैदा हुआ, जैन धर्म विरोध में पैदा हुआ, चार्वाक विरोध में पैदा हुआ, वाम मार्ग विरोध में पैदा हुआ, और भी संप्रदाय विरोध में पैदा हुए। उस परिणाम क्या हुआ? परिणाम बड़ा विचित्र हुआ। वेद के साथ एक ईश्वर था, एक धर्मग्रंथ था, एक पद्धति थी, एक धर्म था, एक धर्मग्रंथ था, एक ईश्वर था। आपने हटा दिया किसको? वेद को। अब हट गया तो क्या क्या हटेगा? खाली वेद तो नहीं हटेगा। यदि वेद हट गया तो धर्मग्रंथ हट गया, धर्मग्रंथ हट गया तो धर्म हट गया, और धर्म हट गया तो ईश्वर भी हट गया। परिणाम एक धर्मग्रंथ, एक धर्म, एक ईश्वर के स्थान पर अनेक ईश्वर, अनेक धर्मग्रंथ, अनेक गुरु पैदा हो गए। तो आज ये जो इतना अलगाव आपको दिखाई देता है, ऐसे ही नहीं हुआ है, ये पैदा हुआ है, किया गया है, परिणाम हुआ है। क्योंकि जिस चीज से आपने रोक दिया तो दूसरा कुछ ना कुछ तो होगा, खाली तो नहीं होगा। तो भारत में यह हुआ, और जब भारत से बाहर वैदिक धर्म नहीं गया, वैदिक विचार नहीं गए, वैदिक उपदेशक नहीं गया, वैदिक प्रचारक नहीं गया, वहां ईसाइत का, इस्लाम का, पारसियों का, जिसका दूसरे दूसरे मत मतांतरों का जन्म हुआ। तो इस सारे में दो तरह के हैं, कुछ वेद को मानते तो हैं पर वेद जानते नहीं है। सारे हमारे हिंदू भाई जो हैं, जितने धर्म मानते हैं, उनको वेद से विरोध नहीं है, लेकिन वेद के बारे में उनको पता कुछ नहीं है। और दूसरे वेद के विरोधी हैं, वो कहते हैं ये जो ब्राह्मण कह रहा है ना, ये दुष्ट है। यदि ये ब्राह्मण है, बौद्ध का क्या कहना है, यदि तुम यज्ञ में हिंसा करते हो, मैं इस यज्ञ को स्वीकार नहीं करता। तुम कहते हो कि ऐसा करना वेद में लिखा है, मैं ऐसे वेद को भी स्वीकार नहीं करता। आप कहते हो वेद ईश्वर का है, तो मैं ऐसे ईश्वर को भी स्वीकार नहीं करता। अब इसमें ये बताओ, वेद की गलती कहां है? आपको एक बड़ा आश्चर्य होगा, ऐसा नहीं हुआ वेद के विद्वान बीच में नहीं हुए। हमारी जानकारी में जो सबसे बड़ा विद्वान हुआ है वेद का, वो आचार्य सायण हुआ है, और वो 11वीं शताब्दी में हुआ है, और वो महाराजा विजयनगरम का जो सचिव था, उसका सायण का बड़ा भाई था माधव, उसका छोटा भाई सायण है। और इसने जो वेद के ग्रंथ लिखे हैं, उसके पीछे 500 विद्वान इनके भाष्य करने में लगे थे, और उनका ये मुख्य संपादक था, और इसके निर्देशन में वो बड़ा काम हुआ है जो हमारे सामने आज भी है। उसमें उसकी विद्वत्ता की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर बात तो नहीं बनी ना, सारा यज्ञ से अतिरिक्त कुछ नहीं, और यज्ञ में भी जो कुछ मनमाना है वो है, तो इसी के लिए वेद है और इसी से है, तो कोई वेद का मतलब कुछ नहीं निकलता। एक दिन की घटना है, मैं झरिया में रहता था, बहुत पुरानी बात है, सन 74 की बात है। वहां एक अर्जुन अग्रवाल बहुत बड़े कोयला के खदानों के मालिक होते थे, वो मुझे किसी कारण से बुला ले गए, उनको विद्वानों को बुलाने का बहुत अच्छा लगता था, शौक था। एक दिन मेरे पास उनके भतीजे शिव आए, कहने लगे जी आज हमारे यहां वो आईजी हैं बिहार के, वो आएंगे। उन दिनों सारा एक ही था प्रांत, तो आप ऐसा करना कि पुस्तकालय खोलकर रखना। पुस्तकालय पंडित स्वामी अखिलानंद जी वहां रहते थे मेरे से पहले 10-15 साल तक, जो अपने ब्रह्मदत्त जी ज्ञानसु जी के सहपाठी थे, लाहौर के पढ़े हुए थे, जिन्होंने रामायण पर व्याख्या लिखी है, जिसको रेवली से प्रकाशित हुई है। ठीक है, वो एकदम धड़धड़ाती हुई 10-20 गाड़ियां मैदान में आती हैं और उनमें से जो मुख्य पुलिस का अधिकारी है वो आता है, पुस्तकालय है, मैंने सब खोल के रखा हुआ है। मुझे आश्चर्य हुआ, एक तो पुलिस का आदमी, फिर कहता है वेद के बारे में बात करता है, मुझे वेद के ग्रंथ देखने हैं, मुझे ये दिखाओ, इस आचार्य का दिखाओ, उस आचार्य का दिखाओ, उसका भाष्य दिखाओ। बड़ा आश्चर्य है कि पहले तो आजकल का पढ़ा लिखा आदमी, आजकल में भी पुलिस का आदमी, पुलिस में भी ऊंचे आईजी स्तर का आदमी, और वो भी वेद के भाष्य के इसके उसके बारे में बात कर रहा है, तो होगा किसी परिवार से उसका जुड़ाव होगा। हम दोनों एक अलमारी पर खड़े थे। उसने बहुत ही प्यारा प्रश्न किया और वो उसके स्वाध्याय का प्रतीक था कि मतलब वो वेद के बारे में कितनी गहराई से जानकारी रखता है। उसने कहा, उसके मुंह से जो प्रश्न निकला कि मुझे आश्चर्य होता है सायण जैसा विद्वान और यमयमी सूक्त का ऐसा अर्थ कर रहा है। यमयमी सूक्त क्या चीज है? ऋग्वेद के 10वें मंडल का 18वां सूक्त है, उसमें यमयमी संवाद है और संवाद उसमें यह है कि एक महिला जो है वो एक पुरुष से कह रही है कि तुम मुझसे विवाह करो। पुरुष कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं और मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, ये हमारी परंपरा नहीं है। अब पूरा घटनाक्रम जो भी कुछ है, वेद क्या कहता है अलग चीज है, व्याख्याकार क्या कहते हैं अलग चीज है। तो वो कहने लगा कि सायण जैसा आदमी ये बात कैसे कह सकता है, सायण इतना विद्वान है। तो मैंने बहुत ही सहज बुद्धि से, उस दिन की बात है, सन 74 की, कोई आज की बात तो है नहीं, मेरे मुंह से एक वाक्य निकला। मैंने कहा साहब बात यह है, सायण विद्वान है तो दो बातें हैं, उनमें से एक तो हो नहीं सकती और दूसरी को आप मना नहीं कर सकते। ये बात तो वो व्यक्ति कह सकता है या तो जानता नहीं हो और जानता हो लेकिन परंपरा तोड़ने का साहस नहीं रखता हो। तो एकदम खड़ा होकर बोला, तुम्हारी समाजी हो क्या? मैंने कहा निश्चित। मैंने कहा कि यमयमी सूक्त का अर्थ क्या होना चाहिए, मंत्र से देखो, भाष्य से क्यों देखते हो, हमारे साथ समस्या क्या है? वेद के बारे में अभी मैं डॉक्टर शशिचंद जी से बात कर रहा था, एक काम आपके यहां होने जा रहा है अमेरिका में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में नारायण मूर्ति जो कंप्यूटर के बड़े संस्थापक हैं, वो $5.2 मिलियन दे करके उन्होंने कोई वहां वो बनाया है, कोई चेयर बनाई है, कोई प्रोजेक्ट खोला है और उसका चलाने का जिम्मा इस समय जो उसके जैसे हमारे यहाँ चीफ एडिटर सायण था उसी तरह का एडिटर वह यहाँ पोलक शेल्डन पोलक, तो वो काम कर रहा है तो उसका विरोध हो रहा है हमारे देश में। विरोध होने का कारण यह था कि शेल्डन पोलक कम्युनिस्ट है, एक चीज, और वो संस्कृत भाषा को मृत भाषा मानता है, दूसरी चीज, वो संस्कृत को भारत में विदेशी भाषा मानता है, तीसरी चीज, वो वेद में कोई विद्या नहीं मानता, ये चौथी चीज, भारत में कोई संस्कृति थी ये उसकी मान्यता नहीं है कि यहां संस्कृति नाम की कोई चीज कभी रही नहीं, ये पांचवी चीज, वो ये मानता है कि वेद में या वैदिक साहित्य में जो कुछ अच्छा है वो बुद्ध साहित्य के बाद पैदा हुआ है, ये छठी चीज। इस सारे का उद्देश्य क्या है कि वेद का महत्व घटाना, संस्कृत का महत्व घटाना, आर्य सभ्यता इतिहास का महत्व घटाना, जो काम कभी मैक्स मुलर के द्वारा ऑक्सफोर्ड में हुआ था वो आज हार्वर्ड में शेल्डन पोलक के द्वारा हो रहा है, उसके माध्यम से हो रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि मैक्स मुलर ने जिस काम को किया था उसका उसके लिए पैसा जोसेफ बॉर्डन ने लगाया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सैनिक था, अधिकारी था, और उसको एक कठिनाई आती थी कि भारत में ईसाइयत के प्रचार करने में वेद आड़े आता था, जब वेद की बात आती थी तो लोग और किसी चीज को स्वीकार नहीं करते थे। तो वो मैक्स मुलर के माध्यम से उस काम के लिए उसने यत्न किया कि किसी भी तरह से वेद के प्रति ऐसी बात कही जाए जो वेद की प्रतिष्ठा को कम करे, अर्थात वेद पढ़ने के बाद किसी के मन में यूं न लगे ये भी कोई चीज है, बेवकूफी की बात है। इसके लिए उसने प्रयत्न किया और वो सफल हो। और आज सबसे बड़ी सफलता उसकी ये है कि पिछले जनवरी में एक विश्व पुस्तक मेला हुआ हमारे यहां, और पूरे विश्व पुस्तक मेले में कोई संस्कृत की पुस्तक बेचने की दुकान नहीं थी, क्योंकि भारत में आज कोई संस्कृत पढ़ता नहीं है, पाठ्यक्रम में संस्कृत है नहीं, क्योंकि भाषा माध्यम कोई भी संस्कृत क्या हिंदी भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, संसद का माध्यम अंग्रेजी है, और न्यायालय का माध्यम अंग्रेजी है, प्रशासन का माध्यम अंग्रेजी है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। तो ये इसके कारण से हमारी नई पीढ़ी 50 साल के अंदर संस्कृत और हिंदी से अनभिज्ञ हो गई। तो शेल्डन पोलक का योगदान क्या होगा इसमें कि वो संस्कृत का अंग्रेजी अनुवाद करेगा, अपने विचारों से करेगा, और वो प्रामाणिक माना जाएगा, संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वो कहता है कि संस्कृत कोई रिसर्च की भाषा नहीं है, और यदि संस्कृत में कोई रिसर्च करना चाहे तो अंग्रेजी नहीं आती तो रिसर्च कर भी नहीं सकता। तो संस्कृत को हर तरह से अवमूल्यन करना ब्रिटिश का समकाल था, अवमूल्यन करना आज का पढ़े लिखे लोगों का, राजनीतिज्ञों का यह उद्देश्य है। आप ये समझ लो कि वेद का महत्व घटाने के लिए कई शताब्दी लग रहे हैं, तो इससे आप कल्पना करो कि वेद का महत्व घटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो प्राण है ना, मरता आदमी तब है जिस दिन प्राण निकलते हैं, और प्राण तब तक नहीं निकलेंगे जब तक इस संस्कृति में वेद नाम की चीज रहेगी। क्यों, उसका एक उदाहरण, आप महत्व पूछते हो ना वेद का, ऋषि दयानंद ने क्या किया, कुछ नहीं किया, केवल एक चीज को लाकर रखा जो यहां से तिरोहित थी, गायब थी, वेद। आप कल्पना करो कि उनके होने से क्या हुआ। एक दिन एक बात चल रही थी तो मैंने कहा देखो मुझे तो कुछ नहीं लगता दयानंद ने कुछ खास किया हो, तो आदमी चौंकता और आर्य समाज ये तो बहुत ही चौंक जाएगा कि ये कैसा आदमी है, क्या कह रहा है कि आज दयानंद ने कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं किया, केवल इतना किया कि मैं 150 साल पहले ईसाई होने वाला था, मैं 150 साल ईसाई होने से बच गया, 150 साल बाद हो जाऊंगा। तो ये 150 साल का जो ईसाई नहीं होने का कारण था, ये कारण दयानंद था, उसके कारण से मैं नहीं हो पाया, नहीं किसी कोई मुझे बना सका। और यदि आज मेरे पास वेद नहीं रहेगा, मुझे कुछ न कुछ तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं वेद नहीं है तो जो वेद से बाहर है वही तो बनूंगा, उसके अतिरिक्त मैं क्या बनूंगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने वेद से कैसे जोड़ा, उसका एक उदाहरण देता हूं। आप एक कल्पना करो, यदि आप थोड़े से भी वेद में रुचि रखते हो, आर्य समाज से तो परिचित हो ही हो, तो आपकी दिनचर्या में वेद कहां कहां आता है। आप सवेरे उठते हो तो कुछ बोलते हो क्या, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातरजितम भगमुग्रम हुवेम, 5-6 मंत्र हैं ये, मेरे प्रातः काल की वंदना है, ये क्या है, वेद मंत्र हैं। मैं स्नान के लिए जाता हूं तो उस समय के मंत्र हैं, आपो हिष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे, ये 9 मंत्र हैं, ये मेरे स्नान के मंत्र हैं। मैं संध्या में आता हूं, 19 मंत्र हैं। मैं हवन करता हूं, 15-16-18 मंत्र हैं। मैं भोजन करता हूं, अन्नपते अनुष्ठानो बोलता हूं। मैं कभी कभी भोजन समाप्त करता हूं, मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता बोलता हूं। मैं पाठ पढ़ता हूं, सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही, पाठ करता हूं, शन्नो मित्र का पाठ करता हूं। मैं यात्रा करता हूं, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमा साविव, पाठ करता हूं। मैं रात को सोता हूं, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु 7 मंत्रों का पाठ करता हूं। मेरे जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं, वेद मंत्रों से होते हैं। मेरे जन्म के बाद के संस्कार सारे वेद मंत्रों से होते हैं। मेरे मरने के बाद का संस्कार भी वेद मंत्र से होता है। उससे भी आश्चर्य की बात, जिस दिन मैं पैदा होता हूं उस दिन जो क्रिया होती है वो क्या होती है? जात कर्म होती है। जात कर्म में क्या होता है? मेरी जबान पर शहद से सोने की शलाका लेकर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ओम लिखा जाता है। और मेरे कान में कुछ बोला जाता है, वेदो असी। भाई बोलना तुझे ओम है, सुनना तुझे वेद है। अब देख लो क्या महत्व है, मुझे तो पता नहीं। मुझे बोलना क्या है? ओम है। और मुझे सुनना क्या है? वेद है। आप कमाल है। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हो, सारे संस्कार तो होते ही होते हैं। आजकल हमारे लोगों में तो कोई पढ़ने का संस्कार नहीं होता, लेकिन पुरानी परंपरा में तो होता है। क्या नाम है जी उसका? वेद आरंभ। क्यों जी? उसका व्याकरण आरंभ नाम क्यों नहीं है? उसका वैदिक आरंभ नाम क्यों नहीं है? उसका कोई और शास्त्र आरंभ नाम क्यों नहीं है? उसका नाम वेदारंभ क्यों है? मैं अक्षर सीख रहा हूं अक्षर सीखने के लिए नहीं, मैं भाषा सीख रहा हूं भाषा सीखने के लिए नहीं, मैं कोई विद्या सीख रहा हूं विद्या सीखना मेरा प्रयोजन नहीं है। विद्या मेरी जरूरत हो सकती है, विद्या मेरी आजीविका हो सकती है, लेकिन विद्या मेरा उद्देश्य नहीं हो सकता। मैं इंजीनियर बन सकता हूं, बनना चाहिए, जरूरी है, लेकिन वो मेरी आजीविका है। मेरे जीवन का प्रयोजन इंजीनियर बनना नहीं है, मेरे जीवन का प्रयोजन केवल चिकित्सक बनना नहीं है, मेरे जीवन का प्रयोजन वकील बनना नहीं है, मेरे जीवन का प्रयोजन मैनेजर बनना नहीं है। ये मेरे काम है, मेरी जरूरत है, मेरी आजीविका है। मेरा प्रयोजन क्या है? मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? तो जो मेरे जीवन का प्रयोजन है ना, वो वेद है। और वो पूरा प्रयोजन क्या है, वो उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप एक कल्पना करना, वेद का प्रयोजन क्या है, वेद का महत्व क्या है, इस छोटी सी चर्चा में बताना तो बड़ा मुश्किल है, पर संकेत में बता देता हूं। जिस दिन वेद पढ़ करके एक छात्र गुरुकुल से स्नातक होता है, उस दिन कुछ होता है। क्या बोलते हैं उसको? कुछ बोलते हैं। उसे बोलते हैं दीक्षांत। यहां क्या बोलते हैं पता नहीं, कन्वोकेशन बोलते हैं शायद, कन्वोकेशन एड्रेस होता है ना। उसमें आज भी चार पंक्ति पढ़ी जाती है, भारत में आज भी चार पंक्ति पढ़ी जाती है। वो आठ दस पंक्तियां हैं बड़े काम की, आपको सारा वेद का महत्व क्या है केवल उन पंक्तियों से ही पता चल जाएगा, क्योंकि उस पंक्ति की पहली, उस सारे संदर्भ की, उस जिस पैराग्राफ की पहली पंक्ति पता है क्या है? वेदम अनुच्य आचार्यो अंते वासिनम अनुशास्ती। कि इस वेदम अनुच्य, वेद पढ़ने के बाद चलते हुए को, जैसे आप किसी बेटी की शादी करते हैं और शादी के बाद जब विदा करते हैं और विदा करते हुए बड़ी बूढ़ी महिलाएं उसको कुछ उपदेश देती हैं, कुछ सलाह देती हैं, बेटा ऐसा ऐसा जीवन में करोगी तो सुख में रहोगी, लाभ में रहोगी, फायदे में रहोगी, और यदि ऐसा नहीं करोगी तो दुख में रहोगी। वो जो आचार्य चलते हुए विद्यार्थी को कह रहा है वो वेद का महत्व है, वो वेद का प्रयोजन है। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। चलते समय कह रहा है तो ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। मैं उस लंबे विस्तार में नहीं जाऊंगा, उस प्रसंग को छेड़ूंगा तो बहुत लंबा प्रसंग है। चलिए एक और चीज देखता हूं। हमारे यहां शास्त्र पढ़े जाते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद निघंटु की भूमिका में एक बात लिखते हैं, यदि व्याकरण पढ़ के वेद में प्रवृत्ति नहीं हुई तो व्याकरण पढ़ना निरर्थक है। अर्थात हम व्याकरण पढ़ते हैं भाषा के लिए नहीं, हम भाषा जानते हैं साहित्य के लिए नहीं, हम कुछ भी सीखते हैं वो सीखने के लिए नहीं, हम जो कुछ सीखते हैं उसका चरम जो लक्ष्य है वो वेद। एक उदाहरण देता हूं, हमारे यहां व्याकरण जो है वेदांग है। वेदांग का मतलब होता है वेद का अंग, हमारे जितने पाश्चात्य लोग हैं ना, इनकी मुश्किल क्या है, ये पैमाना अभी अपना बनाते हैं, काल का क्रम भी अपना रखते हैं, निर्णय के प्रकार भी अपने रखते हैं। और एक कहावत है कि फैसला पहले लिख करके बहस करते हैं। कभी होता है ना ऐसा, वकील लोग कहते हैं कि भाई पहले फैसला लिख लो फिर बहस कर लेंगे। तो ये सारी जो पाश्चात्य बहस है ना, इसके निर्णय पहले लिखे हुए होते हैं और बहस बाद में होती है। लेकिन हमारे यहां एक बार वेद सम्मेलन हो रहा था, संस्कृत का प्राच्य विद्या सम्मेलन कुरुक्षेत्र में, एक व्यक्ति भाषण दे रहा था, वेद में ये भी है, वेद में ये भी है, वेद में ये भी है, मूर्ति पूजा भी है, साकारवाद भी है, निराकारवाद भी है, एक देवतावाद भी है, बहुदेवतावाद भी है। बड़ा विद्वान आदमी था, अंग्रेजी बोलता था, हमारे यहां क्योंकि जो अंग्रेजी बोलता है वही विद्वान होता है, बाकी तो किसी को कुछ आता नहीं। मैंने उससे पूछा, बेचारा वो मर गया अभी, तो नाम लेने से कोई लाभ नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, एक वेद में कहते हैं एक वाक्यता गुण होता है, ये भी है कि नहीं है? एक वाक्यता गुण उसको कहते हैं कि एक समझदार आदमी दिन में 1000 बात कहता है पर एक दूसरे को काटती नहीं है बात, पागलों की तरह कुछ भी नहीं बोलता। 1000 बोली वो ठीक है, लेकिन 1000 बात एक दूसरे से संबंध रखती हैं, जुड़ी होती हैं। ये नहीं है कि आने का मतलब जाना और जाने का मतलब भागना, ये नहीं होता। तो वेद में क्या है, एक वाक्यता गुण, अर्थात जैसे एक बुद्धिमान आदमी जब कोई बात कहता है तो उसकी बातों में परस्पर विरोध न हो। मैंने कहा दूसरा दर्शन का एक सूत्र आप याद करो, वैशिष्ट दर्शनकार कहता है बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, वेद में जो बात कही गई है वो बुद्धि पूर्वक कही गई है, बुद्धि के बिना कोई बात नहीं कही गई है। तो क्या जो आप कह रहे हो ये बुद्धिपूर्वक है? तो कहने लगा मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता। मैंने कहा मेरा उत्तर मिल गया, आप नहीं देना चाहते हो मत दो। तो ये जो चिंतन है ना, नया जो इतिहास हम पढ़ते हैं, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आप पूरे वेद और वैदिक साहित्य में ऋषि दयानंद ने जो अद्भुत बात की है, वेद को समझने के लिए यदि कोई सूत्र कहीं से मिला है तो वो विरजानंद से मिला है। और उस सूत्र का नाम पता है क्या है? आर्ष और अनार्ष। जो आर्ष है वो ऋषियों का बनाया हुआ है, सच है, वो हमारे जीवन के लिए हितकारक है, वो लोकोपकार की भावना से लिखा गया है। जो अनार्ष है वो अपने स्वार्थ के लिए लिखा गया, अपने पांडित्य के लिए लिखा गया, अपना रोबदाब बताने के लिए लिखा गया। तो पूरे संस्कृत साहित्य को ऋषि दंडी स्वामी विरजानंद ने दो भागों में कहा, दयानंद बांट लेना, ये आर्ष है या अनार्ष है। उसके बाद दयानंद ने उसको फिर दो भागों में बांटा कि भाई आर्ष है, लेकिन आर्ष भी दो भागों में है, एक स्वतः प्रमाण है, एक परतः प्रमाण है। जैसे सूर्य है, इसको बताने के लिए किसी सूरज की जरूरत नहीं पड़ती, यह स्वतः प्रमाण है, लेकिन किसी चीज को बताने के लिए दीपक दिखाना पड़ता है, यह परतः प्रमाण है। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि बाकी सारे ऋषि प्रोक्त शास्त्र परतः प्रमाण हैं, यदि वो वेद के अनुकूल हैं तो प्रमाण हैं, और उनमें और वेद में विरोध होगा तो वो मान्य नहीं होगा, वेद मान्य होगा। स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण। उसके बाद उन्होंने एक सबसे जोरदार जो बात कही, और आपका समय समाप्ति पर है, उससे पहले कहूं, क्योंकि ये विषय इतना लंबा चौड़ा है और बोलने में भी कितना भी बोल सकते हैं और सुनना भी कितना अच्छा जा सकता है, आनंद भी आता है। तो वो पता है क्या कहते हैं ऋषि दयानंद ने जो अद्भुत बात कही है, वो क्या कही? वो ये कहते हैं कि तुम कहते हो वेद पढ़ने का तुमको अधिकार नहीं है, स्त्री मत पढ़ो, शूद्र मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो। ऋषि दयानंद कहते हैं यदि परमेश्वर की बनाई कोई चीज है तो उसका सबको अधिकार है, हवा पर, पानी पर, अन्न पर, जो भी जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं जिन्हें ईश्वर ने दिया है वो उस पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, और है तो पाप है, अन्याय है। और वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, इस पर तो नया व्याख्यान हो सकता है, लेकिन मोटी सी बात केवल इतनी कह देता हूं कि ये संसार ईश्वर ने बनाया ना बनाया, किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए बनाया। तो एक बात बताओ, वो इसके बारे में जानता है कि नहीं जानता? जो बनाता है वो जानता है कि नहीं जानता? जिसने भी बनाया होगा इस दुनिया को, वो जानता है कि नहीं जानता? जानता है। तो जानता है तो जिसके लिए बनाया है उसको उसको बताएगा कि नहीं बताएगा? बाप ने जो कुछ सीखा है वो बेटे को बताएगा कि नहीं बताएगा? गुरु ने जो सीखा है वो शिष्य को बताएगा कि नहीं बताएगा? दुकानदार ने कोई चीज ग्राहक को बेची है तो उसके बारे में बताएगा कि नहीं बताएगा? तो आप ये कैसे मान लेंगे कि भगवान ने आदमी को दुनिया तो दे दी लेकिन दुनिया में जीना कैसे है ये उसने नहीं बताया, भूल गया? ये हो सकता है? यदि ये सच है कि ये दुनिया दी है और ये सच है कि इस दुनिया का उपयोग मनुष्य को बताए बिना आता नहीं है, कौन बताएगा? समाप्ति के लिए मैं एक ही बात कहता हूं, मनु की बात दोहराता हूं, बात तो आके बीच में टूट सी जाती है क्योंकि इसके बाद का प्रकरण तो बहुत विस्तार से शुरू होता है जो ऋषि दयानंद की वो है। ऋषि दयानंद ने कहा, यथे माम वाचम कल्याणी मा वदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय च प्रियो देवानाम भूयासम अयम मे कामा समृद्धताम उपमादो नमत। और इसका अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद ने क्या बात कही है पता है? अद्भुत। वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो वेद का ज्ञान स्वयं प्राप्त करे, उसका यह कर्तव्य है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को वेद का ज्ञान दे, और उसका यह भी कर्तव्य है कि उसमें उसके घर में काम करने वाले जो नौकर और चाकर हैं उनको भी वो वेद का ज्ञान प्रदान करे। ऐसा नहीं करता तो वो अपराध करता है, वो पाप करता है। क्यों? अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने की है, एक बात पक्की है, जो चीज सबकी है उसको सबके काम में आना चाहिए, और वेद यदि सबकी चीज है तो सबके काम की भी होगी और उसके बिना उसके काम बिगड़ेंगे भी। दोनों बातें अनिवार्य हैं, इसमें विकल्प नहीं है कि मैं वेद नहीं पढ़ता मेरे सारे काम बन गए, गलत है। जीवन का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हुआ यदि आपने वेद नहीं पढ़ा तो, और प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो जीने से लाभ क्या हुआ? कोई बात नहीं, 10-20 जन्म और लगेंगे, जब पढ़ना तो पढ़ लेना, क्योंकि प्रयोजन जो है ना इंजीनियर बनना है, ना डॉक्टर बनना है, ना मकान बनाना है, ना कुछ गाड़ी खरीदना है, जीवन का प्रयोजन नहीं है, जीवन का प्रयोजन वेद के बिना सिद्ध होता नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने जिस बात को हमारे साथ जोड़ के रखा, इतना जोड़ के रखा कि सवेरे उठने से लेकर शाम तक और पैदा होने से लेकर मरने तक उन्होंने हमको वेद से क्यों बांधा, ताकि हमारा जीवन सुखद हो, सरल हो, प्रयोजन को सिद्ध करने वाला हो, जीवन सार्थक हो, इससे ज्यादा महत्व और क्या हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। आपका बहुत 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 धन्यवाद।
इसमें मना किसने किया है?
इसमें कोई मेरे ऐसे मेरा आपसे कोई विरोध तो नहीं हो सकता। ये मेरे हिस्से में आता है क्या? देखो ऐसा है, आपकी बात मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं सवाल ये है, जो बात आप कह रही हैं उसका मेरा आपका विरोध तो कहीं हो नहीं सकता, एक चीज। दूसरा, जहां मेरा करने का काम है मैं ये कह सकता हूँ कि वो मैं करता हूँ, और तो क्या कह सकता हूँ। हाँ, आपके यहां नहीं हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर तो नहीं डाल सकती। मैं वैसे ही कह रहा हूं, उसकी कोई बात नहीं। यदि बात ठीक है, दो बातें आप याद रखिएगा। ऐसा होता है कि जो चीज सबके काम की है उसको अच्छी तरह से सबको जानना चाहिए, मोटी बात। आप यूं सोचते हैं कि खाली कोई बता दे थोड़ी सी चीज, थोड़ी सी तो बता देगा, बताने वाला एक अंग्रेज भी बता रहा है कि ये हिंदू लोग जो है ना मां बकरा काट के डालते हैं, वो भी वेद की बात बता रहा है, और एक वेद की बात दयानंद भी बता रहा है, बताने वाले का तो ये हाल है। तो हमारा क्या कहना है कि आपको यदि भाग्य से मिले अवसर तो अपनी आंखों से पढ़िए, क्यों कि प्रामाणिक जो चीज है, मूल जो चीज है, उससे जुड़े रहने से जो लाभ होता है वो अनुवाद से काम चलाया जाता है, महत्व प्राप्त नहीं होता है। ऐसा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है बहन जी, आप क्या बात करती हो। अंग्रेजी आपको आती है? अंग्रेजी मुझे बड़ी मुश्किल लगती है। क्यों? मैंने समय नहीं लगाया। आपने कितने दिन वेद पर लगाए हैं, कितनी संस्कृत पढ़ी है? बहन जी, बहन मैं आपसे सहमत हूं, मेरी एक बात आप स्वीकार करेंगी, आप जिस चीज में परिश्रम करेंगे, समय करेंगे, बल लगाएंगे, वो आपको आएगा। वेद इतने कठिन नहीं है कि कोई भी भाषा, यदि कोई अंग्रेजी सीख सकता है, फ्रेंच सीख सकता है, जर्मन सीख सकता है, संस्कृत भी सीख सकता है, सीखता क्यों नहीं है वो एक अलग चीज है। एक दिन की रोचक बात बताऊं मैं आपको। एक सज्जन, मैं एक कॉलेज में व्याख्यान के लिए गया हुआ था, कॉलेज के प्रिंसिपल सर्वज्ञ होते हैं, तो वो हमारी जो सभा हो रही थी उसकी अध्यक्षता कर रहा था, हो गए किसी विषय का, संस्कृत का तो था नहीं, वो उठ के दिया उसने भाषण कि संस्कृत को सरल बनाना चाहिए ताकि सब लोगों की समझ में आए, संस्कृत को ऐसा करना चाहिए, ऐसे पढ़ाना चाहिए, इसमें तीन वचन की जगह दो वचन कर देने चाहिए, इसमें दस लकार की जगह पांच लकार कर देने चाहिए। बोल चाल के उस संयोग से मेरे पास बैठ गया, कॉलेज का प्रिंसिपल था, बड़ा कॉलेज था। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब एक बात बताओ, ये अंग्रेजी सरल थी इसलिए पढ़ी क्या आपने? बोले नहीं। मैंने कहा भाषा सरल और कठिन है इसलिए नहीं पढ़ी जाती, भाषा आवश्यकता से पढ़ी जाती है। हमारे पुष्कर की जो मालिन है, सब्जी बेचती है, वो फ्रेंच बोलती है, इटालियन बोलती है, अंग्रेजी का तो मतलब कितना है, वो जर्मन बोलती है क्योंकि उसको सब्जी बेचनी है, उसका ग्राहक जर्मन है, इटालियन है, फ्रांसीसी बोलती है फ्रेंच। तो भाषा जो है वो आवश्यकता से सीखी जाती है, कठिन और सरल भाषा नहीं होती। आपके मन में इच्छा होगी, आपको अवसर मिलेगा, कोई चीज कठिन नहीं है, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं लगती और आपको यह समय या सुविधा या उचित गुरु नहीं मिलता, कठिन है, इतनी सी बात है। चलिए, अवश्य ठीक है। देखो ये आपने चार प्रश्न किए, चार व्याख्यान है पूरे, कोई बात नहीं। ऐसा है, बैठिया। अच्छा देखो, बनने का, वेद के बनने बनाने की जहां तक बात है, हम वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, और उसका पहला कारण मैंने आपको बताया कि जिसने आपको संसार बनाकर दिया, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इसके उपयोग का ज्ञान आपको दे। झगड़ा कहां आकर खड़ा होता है, कैसे दिया? भगवान को तो आप निराकार मानते हो, मुख उसका है नहीं, बोलेगा कैसे, देगा कैसे? समस्या तो यही है ना आपकी। ऋषि दयानंद की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ लेना, इन समस्याओं का बहुत प्यारा समाधान उसमें बड़ा अच्छा दिया हुआ है। वो कहते हैं दूर की चीज हो उसके लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता है। आप दूर बैठे हैं इसलिए मुझे ये लगाना पड़ा और जोर से बोलना पड़ा, आपको आवाज आई। डॉक्टर साहब आपके बगल में बैठे हैं, उनको तो नहीं लगाना पड़ेगा, और बहुत ही गोपनीय बात करेंगे तो शायद दूसरे को सुनाई भी नहीं देगा। तो जितने आप नजदीक जाएंगे उतनी बोलने की आवश्यकता कम हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, मुख आपके पास है लेकिन आपका मुख आपके कानों के लिए नहीं है, ठीक है? मतलब मेरे कान मेरी आवाज सुनने के लिए नहीं बने हैं, असहमत हो तो बोलो। और इसका एक, यदि आप डॉक्टर हो तो मेरी बात आपसे पकड़ लेंगे, मेरी आवाज मेरे मस्तिष्क में कान से नहीं जाती, मेरी आवाज मेरे मस्तिष्क में अंदर की एक नर्व है, उसका नाम भूल गया मैं, उससे जाती है, इसलिए मेरा मुंह मेरे कान के लिए नहीं बना। मेरा मुंह दूसरे के कान के लिए बना है और दूसरे के कान मेरे मुख के लिए बने हैं। मेरी आवाज दूसरा सुनता है, दूसरे की आवाज मैं सुनता हूं, और ये दोनों हम क्योंकि दूर हैं इसलिए हमारे बीच में उपकरणों की, साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जितने हम नजदीक आते जाएंगे उतने उतने साधन हटते जाएंगे। तो अब परमेश्वर मेरे नजदीक है कि दूर है? नजदीक है। कितना नजदीक है? मेरे आत्मा के अंदर है। अब हम दोनों के बीच में उपकरण कितने चाहिए? चाहिए क्या? अच्छा, प्रमाण। आप जब सोचते हो तो भाषा होती है कि नहीं होती? आप बिना भाषा के सोच सकते हो? तो जिस दिन आपने पहली बार सोचा होगा, क्या भाषा होगी नहीं आपके पास? पहले दिन आपके पास भूख थी, भोजन था कि नहीं था? पहले दिन प्यास थी, उस दिन पानी था कि नहीं था? आपने आंख खोली, प्रकाश था कि नहीं था? तो जिस दिन आपको भगवान ने अकल दी, उस दिन अकल के लिए सामग्री थी कि नहीं थी? तो जब आप सोचते हो तो भाषा है आपके पास, और सोचते हो तो न मुख की जरूरत होती है और न कान की। अब क्या कहते हो? जब चीज मेरे अंदर से पैदा होनी है तब बोलने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो हमारा प्रारंभिक ज्ञान है वो हमारे ऋषियों के आत्मा से हमको प्राप्त हुआ है। दूसरी जो चीज है, आपने दूसरा प्रश्न क्या किया था? श्रुति है। श्रुति और जो है ये भी एक ऐसी मान्य चीज नहीं है कि पहले सुनते ही सुनते थे, लिखते नहीं थे, ऐसा नहीं है। हमारे यहां सबसे पहले एक कृषि शब्द बना है, और ये कृष धातु का अर्थ बता सकता है कोई? कृष धातु का अर्थ है लिखना, जमीन पर लिखते हैं हम, हल की नोक से जमीन पर लिखते हैं, इसको कृषि कहते हैं, कृष विलेखने। उसका क्या रहा होगा वो इतिहास की चीज है उसको, क्योंकि मेरा एक तो इतिहास विषय नहीं है। स्वामी सत्यप्रकाश जी एक बात कहा करते थे, बोले मुझे एक बात का बड़ा दुख होता है कि मैं लंदन में गया तो वहां बाइबिल का संग्रहालय है और उसमें कौन सी शताब्दी में कौन सा हस्तलेख है ये रखा हुआ है। लेकिन वो हमसे पूछने लगे, तुम बता सकते हो कि वेद का सबसे पुराना हस्तलेख कौन सा है? जिसको अपने दादा का नाम याद नहीं रहता वो हस्तलेख क्या रखेगा? हमारी पढ़ने पढ़ाने की रुचि गति कुछ नहीं है, तो इसलिए इस इतिहास वाली बात के बारे में तो प्रामाणिक नहीं कह सकता। लेकिन इतनी बात है कि हमारे यहां जो सबसे पुरानी लिपि उपलब्ध है वो क्या है? ब्राह्मी है। उसका एक उदाहरण देता हूं आपको। ये जो आप ओम लिखते हो ना, एक तो कहते हो ये आर्यसमाज जी ओम है, दूसरा सनातनी ओम है, इसका रहस्य जानते हो? ये सनातनी ओम सनातनी ओम नहीं है, ये ब्राह्मी लिपि का ओम है। बाकी अक्षर बदल गए, पूजा का अक्षर नहीं बदला। तो ब्राह्मी लिपि इस भारतवर्ष में 3,500 साल पुरानी है और उसमें वेद के, आपको वेद के क्या, मनु का एक लेख मैंने देखा है, हमारे संग्रहालय में रखा है। कभी आपकी इच्छा हो तो दिल्ली के पास हमारा संग्रहालय है गुरुकुल झज्जर में, वहां एक अंगूठी का नग है और वो अहिछत्र से मिला है, बरेली के पास पुराना खंडहर है। उस अंगूठी के नग पर मनु का एक श्लोक लिखा हुआ है, धर्मो रक्षति रक्षिता, बड़ा प्रसिद्ध है, धर्म एव हतो हंती धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वदीत। वो आप कल्पना करो, अंगूठी के नग पर ब्राह्मी लिपि का लेख है, तो मनुस्मृति वेद के तो बाद की चीज है। तो इसलिए परंपरा हमारे यहां बची कैसे रही, इसके लिए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का एक प्रकरण याद करना। आप जिसको आजकल कार्बन टेस्ट करते हो, काल का निर्णय करते हो, ये करते हो, हमारे यहां काल का निर्णय करने का सबसे बड़ा साधन पता है क्या है? संकल्प। संकल्प आपके यहां पढ़ते होंगे, पंडित जी पढ़ते होंगे, क्या है क्या शुरू करते हैं ना परमात्मा ने, हाँ, संकल्प जब प्रारंभ करते हो तो जगतः उत्तरार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते, इसमें इतिहास है, भूगोल है, मैं और मेरा वर्तमान है और मेरा प्रयोजन है, ये सारे हमारे यहां संकल्प से आते हैं। और ऋषि दयानंद कहते हैं ये संकल्प ऋषि संसार के पहले दिन से प्रारंभ है और प्रतिदिन हम प्रत्येक कर्म में इसे पढ़ते हैं, और किसी भी चीज को सुरक्षित रखने का उपाय परंपरा से बड़ा कोई नहीं होता। और हम परंपरा से आज ये बता सकते हैं कि उस दिन क्या वार था, उस दिन क्या तारीख थी, उस दिन क्या दिन था, तिथि थी और आज क्या है, ये पूरे संकल्प का हमारे यहां वर्णन है। इसलिए ये उसके निर्णय का प्रकार है। बाकी बीच का इतिहास हमने देख लिया कि भाई कैसे हम दूर हो गए, और एक बड़ी मोटी सी चीज याद रखने की है, वेद नैमित्तिक ज्ञान है, यह तो समझते हैं। जब नैमित्तिक ज्ञान है तो निमित्त जब जब होगा तब तक तो बनेगा। मुझे इतिहास पढ़ाने वाले ने इतिहास पढ़ा दिया, भूगोल पढ़ाने वाले भूगोल पढ़ा दिया, अंग्रेजी पढ़ाने वाले अंग्रेजी पढ़ा दी, लेकिन जिसको नहीं पढ़ाया उसको नहीं आया, जिसने पढ़ा उसको आ गया। तो निमित्त के होने से जो काम होता है वो नैमित्तिक है, तो वेद हमारा नैमित्तिक ज्ञान है। आप इसे सीखोगे तो आएगा, नहीं सीखोगे तो बोलोगे, उसमें वेद कुछ नहीं कर सकता। तो इस दृष्टि से वेद जो है वो उसमें मिलावट नहीं है, उसका एक कारण है, कभी आप हमारे डॉक्टर साहब से पूछ लेना। उसके लिए हमारे यहां एक परंपरा बनी हुई है जिसे विकृति पाठ कहते हैं। जटा क्या है? जटा माला शिखा रेखा ध्वजो रथो ध्वजो दंडो रथो घन अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रम पूर्वा मनीषी भी। मतलब एक मंत्र को 8 तरह से पढ़ते हैं और इतना लंबा हो जाता है कि जैसे अग्नि मिले पुरोहितम पुरोहितम अग्निम 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 पुरोहितम मिले, कभी जैसे संगीत में सहरे गमा होता है ना, वो कौन सा अक्षर कहां जाकर पढ़ता है, तो वैसे ही ये विकृति पाठ में वेद के पद पढ़ते हैं जाकर के। इसके कारण से वेद के मंत्रों में कोई भी नया शब्द आप डाल नहीं सकते, क्योंकि उसमें कैसे फिट करोगे। तो इसलिए उसमें मिलावट नहीं है। अर्थ तो गड़बड़ है ही भाई, अर्थ में गड़बड़ हो सकती थी, वो हो गई। हाँ, और न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो पौराणिकों ने कहा कि न और तस्य एक हैं। बोले बुला लो वेद पाठियों को, वो न तस्य को एक बोल दे तो मान लेंगे, उसमें क्या परेशानी है। तो वहां न अलग है, तस्य न निशेर का है, तस्य उसका है। और इसमें एक रोचक चीज है, न तस्य में एक चीज बहुत ध्यान देने की है, जो पंडित लेखराम ने लिखी है। वो कहते हैं कि यदि न तस्य को न तस्य मानोगे, न और तस्य को एक मानोगे, तो मंत्र के यस्य का क्या करोगे, क्योंकि जिनका प्रयोग उनके बिना नहीं हो सकता, उनका प्रयोग यदि शब्द में है तो जिनका भी होगा। तो तस्य कहते हैं उसका, यस्य कहते हैं जिसका, जिसका प्रयोग शब्द जो है तब तक व्यर्थ है जब तक उसका प्रयोग न हो। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश, वो उसकी प्रतिमा नहीं है जिसका बड़ा इतना यश है। तो जिसका यश है यह शब्द तब सार्थक होगा जब तस्य शब्द सार्थक होगा, इसलिए नहीं हो सकता, आदि आदि बहुत सारी बातें।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट प्रश्न। उसके बारे में कुछ बताएं, आजकल कितने स्कॉलर्स हैं इंडिया में, यू नो
ऐसा है। ये बात हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। देखो, अर्थ को छोड़कर, सही अर्थ को छोड़कर आर्य समाज के लोगों के अतिरिक्त कोई इसको मानता नहीं है, जानना आर्य समाज में भी बहुत थोड़े लोगों का है। और जो पौराणिक लोग हैं वो पाठ को सुरक्षित रखे हुए हैं, और उसके लिए सरकार ने भी अनुदान दिया हुआ है कि भाई यजुर्वेद का पाठ सीखना है कि सामवेद का सीखना है, उसके लिए पाठशालाएं बन रही हैं। भारत सरकार ने बहुत सारा अनुदान दिया है, और हम प्रतिवर्ष ऐसे वेद पाठियों को सम्मानित भी करते हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपके लॉस एंजल्स में सुधीर आनंद हैं जिनसे आप परिचित भी होंगे, वो इन वेद पाठियों के पुरस्कार के रूप में 1,00,000 रूपये हमें प्रतिवर्ष देते हैं, और ताकि इन वेद पाठों की हम प्रतियोगिता कराते हैं। और जिसको पूरा ऋग्वेद याद है उसे 25,000 रूपये देते हैं, जिसे अथर्वेद याद है उसे 10,000 रूपये देते हैं, जिसको 5,000 रूपये देते हैं, दोनों को। इस तरह से हर वर्ष करते हैं। ये थोड़ा है, लेकिन इतने बड़े शिक्षा तंत्र में इसका कोई मूल्य नहीं है, कुछ मतलब नगण्य है। बीज को सुरक्षित रखने की परिस्थिति है बस, और तो कुछ नहीं कह सकता मैं।
और प्रश्न?
हाँ जी।
आचार्य जी, ये शायद क्वेश्चन मेरा रिपीटिशन होगा, बट स्टिल जिज्ञासा के लिए पूछ रही हूँ कि वेद हमारे डिफिकल्ट है और उसको समझने के लिए हमें उसे पढ़ना भी जरूरी है, पर कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि उनको सिंप्लीफाई किया जाए? ये कहना तो बड़ा आसान है कि हम आवश्यकता से सीख सकते हैं, पर हर एक की आवश्यकता फर्क है ना। हर एक आदमी तो विद्वान वेदों का नहीं हो सकता, पर उसको समझने के लिए, उसको अपनी लाइफ में यूज करने के लिए कोई ऐसी पुस्तिका बनाई जा रही है जिसमें उसका सारांश दिया जा रहा है कि उसको बाकी के लोग फॉलो कर सके?
ऐसा है बहन जी, आप ऐसी जगह बैठी हो जो खुद प्रयत्नशील हैं, और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने दो दो विद्वान रखे हुए हैं। आप डॉक्टर हरिश्चंद्र जी की पुस्तकें यदि आपने पढ़ी हो, वो इसी का प्रयत्न है। आपने वो पुस्तकें यहां जरूर दी होंगी, और मतलब उस प्रयत्न की आप कल्पना नहीं कर सकते, इन्होंने कितना बड़ा प्रयत्न किया है, बहुत बड़ा प्रयत्न किया है। और इनका प्रयत्न विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सुपठित लोग हैं। मतलब हम तो प्रवचन वहां करते हैं जहां नहीं पढ़े लोग हैं, कम पढ़े लोग हैं, क्योंकि हमारा परिवेश वैसा ही है। लेकिन ये उनमें करते हैं जो विश्वविद्यालय स्तर के लोग हैं, पशुपठित लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। तो ये प्रयत्न आपको बाहर जाने की शायद आवश्यकता बाद में पड़ेगी। आपके लायक सामग्री ये दोनों विद्वान आपको पूरी दे सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। और बताओ।
प्रश्न?
हाँ जी, चलिए आप कहिए।
कोशिश
करूंगा ये, ठीक है। अभी भी जो मतलब जो कवि संप्रदाय जो है वो बेसिकली ये कहती है कि भाई वेद आपके बहुत कठिन है, आपके समझ में नहीं आएगा, उससे विरोधी क्या मतलब विचारधारा है, ये भी है वो भी है, ऐसे करके तो सिंपल लाइफ रखने के लिए आप हमें फॉलो करो वाली बात के नहीं, भक्ति करो या इस तरह से करो या भजन और जो भी है, तो इसका मतलब हमारे जैसे आदमी जब कुछ नहीं आ तो मुझको याद है कि खाता के सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं।
देखिए हाँ उत्तर दो, ऐसा है भाई साहब ये बात कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल इसलिए नहीं है ऋषि दयानंद ने इतना अच्छा रास्ता दिया है। आप जानना चाहते हैं तो सत्यार प्रकाश के 7-8-9 समोल्लास पढ़िए, वो अंग्रेजी में भी मिलेंगे हिंदी में भी मिलेंगे। स्वामी दयानंद की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़िए, फिर उसके बाद वैदिक साहित्य को समझने के लिए आर्य समाज ने सैकड़ों ग्रंथ लिखे हैं। मेरा आपसे कहना यह है कि किसी की मत मानिए, आप वेद मंत्र को स्वयं पढ़िए, पढ़ना इतना कठिन नहीं है। जब आप इतनी बड़ी बड़ी भाषाएं पढ़ गए, इतना व्यापार करते हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बड़े व्यवसायी हो, तो वेद तो मेरी रोज की जरूरत है, वो मेरे लिए कठिन कैसे हो सकती है, वो केवल दूर है इसलिए कठिन है। अब कठिन तो मुझे रोटी बनाना भी है, खाता रोज हूं लेकिन बनानी तो नहीं आती, बनाने के लिए तो ये बैठी है। आप अमेरिका में हो सकता है बनाने भी लगते हो, वो अलग चीज है। तो ये उतना ही कठिन है जितना हमको भारत में पुरुष के लिए रोटी बनाना कठिन है ना, उतना ही वेद पढ़ना कठिन है, इससे ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन जिस दिन खाने की जरूरत पड़ती है उस दिन बनाना भी आ जाता है, तो जिस दिन आप चाहोगे ना उस दिन आ जाएगा। और निर्णय किसी दूसरे से करने की जरूरत नहीं है, अपनी बुद्धि से करने की जरूरत है। वो आप डरते क्यों हो? ऐसा है, डराते तो इतनी जोर से हैं कि वो ये कहते हैं कि इन महिलाओं को वेद पढ़ने से पाप लगता है, और इनको तो सबको लग चुका, ये डरी क्या? मतलब आज भी शंकराचार्य इनको मंच से उतार देता है। और शंकराचार्य से पत्रकारों ने पूछा कि आप वेद के अधिकार पर ये मानते हो कि केवल पुरुषों का अधिकार है? बोले नहीं, उनको वेद पढ़ने से नुकसान होता है, भगवान ने ऐसी चीज बनाई वेद कि औरत वेद पढ़ ले तो उनका नुकसान होता है, इसको मान लोगे? तो ये पढ़ लिया ना, इनका क्या नुकसान हुआ, पूछ लो इनसे। तो ऐसा है, कोई कुछ भी कहे उसका अधिकार है कहने का, मानना नहीं मानना मेरा अधिकार है, मैं परीक्षा करूंगा, मानने योग्य होगा मानूंगा, नहीं मानने योग्य नहीं मानूंगा। दयानंद के समय में किसने किसने नहीं कहा कि यह वेद नहीं पढ़ने चाहिए, लेकिन दयानंद ने मुंह तोड़ उत्तर दिया, वेद के मंत्र से दिया। तुम कहते हो कि महिला को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये यथेमा वाचम कल्याणी का मंत्र ले पढ़ ले, वेद कहता है वेद सबको पढ़ना चाहिए, आप क्या कहते हो? देखो आर्य समाज ने हमको जो सबसे बड़ी चीज दी है ना, मैं ये तो नहीं कहता कि वेद मुझे आता है, लेकिन कोई ये कहे ना कि वेद में ये बात है तो मैं ये कह सकता हूं हां है, या ये भी कह सकता हूं नहीं है। आप पढ़िए, ये आपके पास भी हो जाएगा। आने का हमको सबसे बड़ा लाभ आर्य समाज में या दयानंद के पास आने का है वो ये है कि मुझे अपने अधिकार का पता चलता है और मुझे अपने अधिकार का प्रयोग करना आता है। तो इसलिए मुझे वेद पढ़ के सबसे बड़ा लाभ क्या है, मैं जो वेद के बारे में कह रहा है उसको कह सकता हूं कि तू गलत है, और मैं ये कह सकता हूं कि यह सही है। ये अधिकार यदि ऋषि दयानंद ने हमको दिया है तो उसका उपयोग क्यों नहीं करते?
और कोई प्रश्न है? हमने पढ़ा है कि जो गीता है वो वेदों का एसेंस है, तो अगर जो गीता पढ़े तो फिर वेदों का कोई डिफरेंस है गीता से पढ़ने, मे बी आई एम नॉट एस्किंग राइट.
ऐसा है भाई साहब, पहली चीज गीता नाम की कोई पुस्तक दुनिया में लिखी नहीं गई. आप मेरे से सहमत हैं? दुनिया में गीता नाम की कोई पुस्तक किसी ने लिखी नहीं है. वो महाभारत का कुछ हिस्सा है. महाभारत के कुछ अध्याय निकाल करके गीता के नाम से पढ़े जाते हैं. उसका नाम वहां गीता लिखा हुआ है. गीता महाभारत में कृष्णार्जुन संवाद, गीता महाभारत में कई हैं, उनमें से एक गीता है. गीता का अर्थ है जिसे गाया गया है. एक चीज, तो ये चीज आप जितनी प्रामाणिक है उतनी प्रामाणिक है नहीं. कारण बता देता हूं. महाभारत में प्रक्षेप है, गीता में भी प्रक्षेप है. मतलब गीता में ऐसी बात भी है जिसे आप स्वीकार नहीं कर सकते. एक श्लोक मैं अभी बोलता हूं. मैं कुरुक्षेत्र में व्याख्यान दे रहा था और वहां गीता के भक्त रहते हैं, गीता सम्मेलन होते हैं, गीता जयंतियां होती हैं, गीता धर्म ग्रंथ है, सब कुछ है, कोई बात नहीं, उसमें कोई बुराई भी नहीं. वहां लिखा है स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा ये चाप्य अधम योनया, अर्थात स्त्रियां वैश्य शूद्र और अधम योनिया मुझे प्राप्त होके परम गति को प्राप्त होती हैं. मैंने उससे पूछा, मैंने कहा स्त्री वैश्य शूद्र अधम योनिया बराबर हैं, मानता है ये? न्याय संगत है ये कहना, गलत है? और मूल चीज क्या है, गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें शुरू के 6 अध्याय बड़े काम के हैं और अंत के 6 अध्याय बहुत काम के हैं, मतलब दर्शन के हैं, समझने के हैं. और बीच में 6 अध्याय गोलगपाड़ा है, उसमें अवतारवाद है, उसमें मतलब तार्किकता नहीं है, केवल कथन है. उसमें एक रोचक चीज क्या है, गीता को कभी आप पढ़ना धर्मग्रंथ समझ के मत पढ़ना. गीता को मैं पढ़ता हूं तो एक इतिहास की तरह पढ़ता हूं और गीता मुझे बहुत प्रिय लगती है. क्यों? दुनिया में किसी समस्या का समाधान हो इसका दूसरा नाम गीता है, बल्कि इसका दूसरा नाम श्री कृष्ण है. श्री कृष्ण दुनिया में वो व्यक्ति है जिसने कभी समस्या को समस्या समझा ही नहीं. कोई समस्या उसके सामने आई और उसका समाधान न किया हो उसका नाम श्री कृष्ण नहीं है. इसका उदाहरण जब गीता पढ़ेंगे तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति था दिल्ली में, उसका नाम था उत्तम प्रकाश बंसल. वो कितना प्रतिष्ठित रहा होगा इसकी कल्पना आप इस बात से कर सकते हो कि वो दिल्ली जनसंघ का अध्यक्ष था. उसकी बाकी कहानी में नहीं जाता मैं. उस व्यक्ति ने 250-300 पेज की किताब लिखी थी और वो मुझे दे दी. मैं उसके पास दान लेने के लिए गया था. संपन्न व्यक्ति था, पैसे वाला व्यवसायी था. तो वो बोला जी दुनिया में गीता जैसी बेवकूफी भरी किताब ही कोई नहीं है. और बोले ये मैंने ये साबित किया है 250 पेज में छपी हुई किताब है. और वो ये कहता है कि मैंने इस बारे में कर्ण सिंह गीता के मर्मज्ञ हैं उनसे सवाल कर दिया. करपात्री जी मर गए अब तो, बोले मैंने उनसे सवाल कर दिया. और सत्यमित्रानंद जी आज हैं जो गीता के मर्मज्ञ माने जाते हैं, उनसे सवाल कर दिया. और तीनों ने मुझे केवल ये कहा लाला जी ये धार्मिक मामला है, इसमें भड़काना नहीं चाहिए. मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया. उसका कहना क्या था कि इसमें 24 सवाल हैं और एक भी सवाल का जवाब नहीं है. उसकी बात सुन ली मैंने. मैंने कहा लाला जी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं. मैंने कहा कि गीता में केवल एक सवाल है और एक सवाल का जवाब भी है. बोले बताओ फिर. तो मैं लंबी बात नहीं करूंगा. मैंने कहा केवल एक सवाल है, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः, मैं नहीं लड़ता. चाहे तो मुझे तीनों लोगों का राज्य मिले तो भी मैं अपने संबंधियों को मारने के लिए तैयार नहीं हूं. मैंने ये पटका तेरा धनुष और मुझे मेरा पीछा छोड़. इतनी सी बात है. जो अर्जुन ये कह रहा है न योत्स्य, मैं नहीं लड़ता, उसको श्री कृष्ण ने कितनी तरह से समझाया, केवल दूसरे अध्याय में 6 तरह से समझाया. 6 तरह से. देख तू यो क्यों सोचता है मरेंगे, आत्मा तो मरती नहीं है, ये तो कपड़े की तरह बदलती है। फिर कहता है तो क्यों सोचता है मरते नहीं है, अरे जो पैदा हुआ है वो तो मरता ही है, जो तू नहीं मारेगा तो भी ये मरने ही हैं, तो तू बचाकर क्या कर लेगा, और ये मरे हुए तो वैसे ही हैं क्योंकि गलत काम कर रहे हैं, इनको तो केवल मारने का नाम ही तो करना है तुझे, तो क्यों सोचता है कि ये तू मार रहा है। और तू यदि नहीं ही मारेगा तो मूर्ख जरा काम नहीं है ये जो तू बोल रहा है, ये धर्म प्रवचन करना लड़ाई करने वाले का काम नहीं है। तो यदि ये मानेगा तो कल तेरे दोस्त कहेंगे कायर कहीं का लड़ाई से भाग गया है। छह तरीके से केवल दूसरे अध्याय में समझाया है, छह तरह से। मैंने कहा लाला जी पहला सवाल यह था कि न योत्से मैं नहीं लड़ूंगा, और मैंने कहा 18वें अध्याय का श्लोक याद करो जाकर, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धात्पत् प्रसादान मयाच्युतो स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह, अर्जुन कह रहा है मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, अकल ठिकाने आ गई। स्मृतिर्लब्धा किससे, त्वत् प्रसादात् तेरी कृपा से, हे अच्युत, कृष्ण का संबोधन है यहां। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान मय अच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह, अब मेरे मन में कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। करिष्ये वचनं तव, अब जो तू कहेगा सो मैं करने के लिए तैयार हूं। और कृष्ण इतना समझदार है, तब तो यूं कहता था मैं लड़ेगा नहीं तो मरेगा, अब क्या कहता है पता है, विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, कोई बात नहीं अब तेरी मर्जी आए वैसा कर ले। इससे ज्यादा शाना, इससे ज्यादा समझदार आदमी कौन मिलेगा आपको दुनिया में। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं, गीता हमारे साहित्य की पांचवी छठी पीढ़ी की पुस्तक है, वेद है, उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, मतलब शाखाएं प्रातिशाख्य हैं। गीता तो सबसे अंतिम सीढ़ी की पुस्तक है। अरे यार बाप बेदादा परदादा परदादा का भी परदादा जिंदा है, अब पोते के जुलूस निकाल रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। वेद ना होते, दादा परदादा मर गए होते, पोते का अभिषेक कर लेते। जब वेद आपके पास हैं, उपवेद आपके पास हैं, शास्त्र आपके पास हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आप, अच्छा एक मोटी बात सुनो, आप गीता पढ़ते हो, गीता की स्तुति में एक श्लोक पढ़ते हो, क्या सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम मात। बोले अर्जुन बछड़ा है, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, ये पाठक जो हैं ये भोक्ता हैं, उपभोग करने वाले हैं। उपनिषद गावो, उपनिषद गौए हैं, और कृष्ण गोपाल है, और गीता है दूध है। तो जब उपनिषद आपके पास हैं भाई, उपनिषद आपके पास हैं, अरे गाय रखोगे कि दूध की बाल्टी पे टूटोगे, गाय को लोगे कि दूध की बाल्टी पर टूटोगे, सवाल मेरा ये है। गाय रखोगे तो दूध रोज मिलेगा, नहीं तो दूध के लिए लोटा लिए घूमते रहोगे। तो मित्र बात समझने की यह है, जब बहुत बड़ी और बहुत उत्कृष्ट चीज हमारे पास है तो वो विकल्प नहीं होता हमारा। हाँ अच्छी चीज है, मतलब हमारी इतिहास की चीज है, वो हमारे लिए प्रेरणादायक, बहुत सारे उपयोग उसमें हैं, इससे क्या इनकार है। लेकिन कोई विरोध है ऐसा नहीं है, विकल्प है ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं।
I'm not sure how well I can frame in Hindi. I will try. I have a simple and straightforward question. I do not know Sanskrit, but I want to learn about Ved. What would be my initial or the destination? How can I go from here to where I want to be?
आप वेद पढ़ना चाहते हैं,
वेद पढ़ना चाहते हैं,
यहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं, ये डॉक्टर हरिश्चंद्र जी को पकड़ लेना, ये आपको वेद पढ़ा देंगे, ये मेरी गारंटी है। उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। संस्कृत पढ़नी है नहीं पढ़नी है, अंग्रेजी में पढ़ना है, एक भले आदमी को आपने रखा हुआ है, मेरे लिए बहुत ही संतोष की बात है। किसी एक समाज में आदमी सबसे बुद्धिमान आदमी को अपना पुरोहित बनाए, आप इनकी योग्यता को पता नहीं जानते नहीं। अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से ये डॉक्टरेट हैं, हैं, और ये बड़े भारी इंजीनियर हैं, लेकिन ये मेरी तरह, मैं तो बिना पढ़े पागल हूं, ये पढ़ के पागल है। मैं तो बिना पढ़ा पागल हूं तो कोई भी कह सकता है पागल तो है ही, लेकिन मुझे आश्चर्य और सुख यह है कि ये पढ़ के पागल है। तो आप इनसे मिलिए, आपकी समस्या का 100% समाधान होगा, ये मेरा वायदा है।
एक छोटा सा क्वेश्चन है,
हाँ क्यों नहीं,
इतना इम्पोर्टेंट है ग्रंथ है तो स्कूल से ही क्यों नहीं शुरू कराते हैं, क्योंकि बचपन में आप, पढ़ा।
आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, हमारी सरकार मैक्स मुलर की सरकार है, हमारी सरकार मैकाले की सरकार है, हमारी पाठविधि में परिवर्तन कहां से आया। आप कभी कलकत्ता जाना, कलकत्ता में विक्टोरिया म्यूजियम जाना, विक्टोरिया म्यूजियम के दाएं भाग में विंग जिसे आप कहते हो, उसके अंदर एक चित्र लगा हुआ है राजा राम मोहन राय का, और उसके नीचे एक बात लिखी हुई है, इस व्यक्ति ने 12 साल मेहनत करके संस्कृत को मीडियम हटा करके अंग्रेजी को स्थापित करने का परिश्रम किया, वहां से हमारा वेद गया। और मैंने आज जैसे आपको बताया, हमारे बच्चे को हिंदी नहीं आती, हमारे बच्चे को संस्कृत नहीं आती, पाठविधि कौन बनाता है, सरकार बनाती है। और भाग्य की बात बताऊं क्या है, हमारी सरकार भी नहीं बनाती, हमारे ये जो बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े अमेरिका इंग्लैंड और यूरोप वाले हैं ना, हमको क्या पढ़ना चाहिए ये बताते हैं और ये सिखाते हैं, हमारी सरकारें तो गुलाम है इनकी, उनको अपना कुछ नहीं आता, इसलिए नहीं पढ़ सकते।
अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, एक करतल ध्वनि से इनका सब धन्यवाद करते हैं। मैं दो चीजें ये कहना चाहूंगा, एक तो जैसे आचार्य जी ने कहा कि हमारे पास इतने विद्वान लोग हैं, हमारे पास एक विदुषी भी हैं कविता जी, उन्होंने PhD करी है संस्कृत में,
ये नाराज नहीं होंगे क्योंकि इनकी प्रशंसा में इनकी भी है।
हाँ नहीं, वो तो ठीक है, पर हमारे पास तीन ऐसे आचार्य हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं संस्कृत जानने में और वेद जानने में, तो उनका आप जैसे भी सहयोग चाहते हैं वो कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, आचार्य जी ने अपने प्रवचन में, हाँ जी एक मिनट, अपने प्रवचन में दो तीन बार वेदाधिभाष्य भूमिका का रेफरेंस दिया है। आप सबको जान के हर्ष होगा कि हम यहाँ पे संस्कृत और गीता क्लासेस तो पिछले बहुत सालों से चला रहे हैं, पर April 5th से जो ट्यूसडे पड़ता है, फर्स्ट अप्रैल का फर्स्ट ट्यूसडे, हम वेदाधिभाष्य भूमिका का पाठ और डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो जिसको भी उसमें रुचि है मुझसे संपर्क करें या आचार्य जी से संपर्क करें, आचार्य सूर्य नंदा जी वो क्लास देंगे। आचार्य हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज।
ऐसा करना तो नहीं चाहिए थोड़ा, पर हमारे यहाँ भूषण जी, इनसे मैं एक मिनट का समय ले आऊं। एक विषय अभी बहुत उठा था, मधुबहन जी ने, विजय बहन जी ने भी उठाया बाद में भी, कि वेद को आसान या कैसे हम उसको संस्कृत को या सीख सकें। तो एक मंत्र आता है बहुत प्रसिद्ध हमारे समाज में, स्तुता मया वर्धा वेद माता सचोदयंताओं में से, तो वेद को माता की तरह कहा गया है, तो परमात्मा को भी माता कहते हैं। तो आपने शायद देखा होगा, मैं यहाँ ध्यान और उपासना पर बहुत महत्व दे रहा हूँ, और उसका एक सजीव उदाहरण मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मेरी भी फॉर्मल एजुकेशन इंजीनियरिंग और साइंस की है, और अभी मैंने बहुत कुछ लिखा है जैसे ईशोपनिषद पर, बहुत सारे मंत्रों पर मैंने अपने ढंग से कुछ अर्थ लिखे हैं और जो आय समाज में भी मान्य है और कुछ नए ढंग से भी हैं। तो ये ऊर्मा कहाँ से पैदा होती है, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ। तो जब आप ईश्वर उपासना के क्षणों में होते हैं, जैसे बच्चा माँ की गोद में है तो माँ की भाषा वो सीख लेता है, उसके लिए मदर टंग बन जाती है। तो जब आपका उससे संबंध माँ और बच्चे जैसा हो जाएगा, तो आपके अंदर स्वाभाविक, आप, मैं तो यहां तक कहूंगा मैंने संस्कृत कुछ नहीं पढ़ी है, लेकिन जब मैं एक वेद मंत्र देखता हूँ मुझे अंदर बहुत कुछ पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब उसके संतान बन जाते हैं ना तो यू ऑलरेडी पिकअप दैट मदर टंग। तो ये चीज एक मैंने देखी है और मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे आप उपासना में आगे बढ़ेंगे और आंख बंद करके उसकी गोद में जाएंगे तो जो मंत्र आप यहाँ बोलते हैं ना हवन में ऐसे ऐसे, अगली बार आप बोलेंगे तो आपके मन में कुछ चीजें आएंगी, वो अपने आप ही आने लगता है। तो माँ देना चाहती है यदि बच्चा उसके पास जाए, मैं ये बोलना चाहता हूँ।